सुबह के 8 बज रहे थे। शिवी अपने रूम में बेफिक्र होकर सो रही थी, तभी उसके कानों में कुत्तों के भौंकने की जोरदार आवाज आई। वो आवाज सुनकर शिवी नींद में भी डर गई और चिल्लाकर उठी।
बचाओ बचाओ कुत्ता,
शिवी जोर से चिल्लाकर उठी। उसके ऐसा करने पर सामने खड़ा उसका सौतेला भाई नील जोर से हंस पड़ा। उसके हाथ में एक छोटा सा पपी था जिसे वो सहला रहा था। इससे मिलो सूजी, ये मेरी स्टेप सिस्टर है जो जबरदस्ती मेरे गले आ गई है। दिन रात मुझे इसकी बेबी सिटिंग करनी पड़ती है, तो सोचा इसी बहाने अपने खुद का एक बच्चा ले आऊं। एटलीस्ट तुम क्यूट तो हो। नीलू उस फीमेल पपी को अभी लेकर आया था। वो उसे शिवी से इंट्रोड्यूस करवा रहा था। तुम्हें पता है ना मुझे कुत्तों से डर लगता है, फिर भी तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो, शिवी चिढ़कर बोली। उसके ऐसा कहने पर नील ने एक नज़र सूजी की तरफ देखा और फिर शिवी की तरफ। उसके बाद उसने कहा, डरना तो इसे तुमसे चाहिए, ये तो एक मासूम सी बेबी पपी है। और तुम जानती हो ना तुम कितनी खतरनाक हो, तुम्हारी वजह से मुझे इस छोटे से घर में रहना पड़ रहा है। गलती तुम्हारी भी थी, इसलिए सारा ब्लेम मुझ पर मत डालो। मुझे अच्छे से याद है उस दिन तुम ही ने प्लान बनाया था मुझे वापस इंडिया भेजने का। इतना बेहुदा प्लान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी वजह से मैं भी पकड़ी गई और सजा के तौर पर हम दोनों को इस छोटे से फ्लैट में रहने के लिए भेज दिया गया। बातों ही बातों में शिवी ने उन दोनों के वहां रहने का कारण बताया। हाँ तो किसने कहा था तुम्हें घर छोड़ने से पहले अपनी मॉम के पास जाकर फेयरवेल स्पीच देने का, नील आंखें घुमाकर बोला। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि डैड ने आज हमें प्रंच पर बुलाया है। सजा के मुताबिक हम यहाँ 6 मंथ्स बिता चुके हैं। अब वो हमारा बिहेवियर और कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। 6 महीने तो क्या, हम 6 साल भी साथ बिता लेंगे तो भी हमारे बीच कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, शिवी ने मुंह बनाकर जवाब दिया। जो भी हो, फॉर गॉड सेक आज उनके सामने नॉर्मल बिहेव करना, ताकि उन्हें लगे कि हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है और वो हमें वापस घर बुला ले। लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती, मुझे ये जगह पसंद है, शिवी ने जवाब दिया। तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, लेकिन मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं पिछले 6 महीनों से अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला हूँ। उसे रोज अलग अलग तरीके के बहाने बनाने पड़ते हैं ताकि वो इस बाथरूम जैसे घर में ना आ जाए। नील और शिवी की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी, उसके बावजूद दोनों बातों ही बातों में अपने सारे राज एक दूसरे से बता ही देते थे। नील की बात सुनकर शिवी हंसने लगी। अगर वो सच में तुमसे प्यार करती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम छोटे घर में रहते हो या बड़े बंगले में। ये सब कहने भर की बातें होती हैं, इन सबको छोड़ो। शिवी, मैं तुम्हें फिर वॉर्न कर रहा हूँ कि तुम डैड के सामने नॉर्मल बिहेव करोगी। इन 6 महीने में मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है, तो उसी नाते मेरी इतनी हेल्प कर दो, इस बार नील ने थोड़ा नरम होकर कहा। शिवी अपने बेड से उठते हुए बोली, अच्छे से जानती हूँ तुमने मेरा कितना और क्या ख्याल रखा है, कहकर वो कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई। वहां वो नहाने के बजाय खुद को वहां लगे आईने में देख रही थी। ठीक है, जाने से पहले मैं इसे वापस इसके घर में सेटल कर दूंगी। वैसे भी मुझे कौन सा यहाँ रहना है, मैं वापस इंडिया जाने वाली हूँ। इस बार मैं अपना प्लान नील से शेयर नहीं करूंगी। आई डोंट वॉन्ट कि लास्ट टाइम की तरह कुछ भी गड़बड़ हो। शिवी वहां खड़े होकर खुद से बातें कर रही थी, तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। वो किसी का वीडियो कॉल था। सिट का कॉल? शिवी ने जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखा। नील वहां मौजूद नहीं था, वो उसके कमरे से जा चुका था। उसने वापस बाथरूम का दरवाजा बंद किया और अपने दोस्त सिद्धांत का कॉल उठाया। कॉल उठाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? सामने स्क्रीन पर सिद्धांत मौजूद था। वो उम्र में शिवी से थोड़ा बड़ा लग रहा था। उसने लॉयर की ड्रेस पहन रखी थी, परफेक्टली सेट बाल और क्लीन शेव में वो काफी डिसेंट लग रहा था। अच्छा, तो अब अपनी फ्रेंड को कॉल करने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? चलो फ्रेंडशिप को एक बार के लिए साइड में कर देते हैं, ये एक प्रोफेशनल कॉल है शिवी, सिद्धांत ने उसकी बात का गंभीरता से जवाब दिया। जैसे ही सिद्धांत ने प्रोफेशनल कॉल का नाम लिया, शिवी के चेहरे का रंग उड़ गया। सब ठीक तो है ना? अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकते। कुछ ही दिनों में तुम्हारे पापा के केस की हियरिंग है, इस बार तुम्हें इंडिया आना ही होगा कुछ भी करके, सिद्धांत ने गंभीर होकर कहा। जानती हूँ मेरा वहां होना कितना जरूरी है, इस बार मैंने सारी तैयारी कर ली है और परसों मेरी फ्लाइट है। सिद, पापा रिहा तो हो जाएंगे ना? शिवी ने उदास होकर पूछा। मैं तुम्हें किसी चीज की अश्योरिटी नहीं देना चाहता, तुम अच्छे से जानती हो अंकल का केस कितना क्रिटिकल है और उसी वजह से सब लॉयर्स ने लेने से मना कर दिया था। मैं भी अपने पापा के खिलाफ जाकर उनके लिए इस केस पर काम कर रहा हूँ। शिवी, मैंने अपनी तरफ से 110% देने की कोशिश की है, लेकिन अंकल मुंह खोलने को तैयार ही नहीं। जब तक वो सच नहीं बताएंगे, तब तक हम उन्हें बेगुनाह कैसे प्रूफ करेंगे? तुम चिंता मत करो सिड, मैं पापा के पास जाऊंगी तो वो मेरे लिए सच जरूर बताएंगे, शिवी ने पूरे विश्वास के साथ कहा। आई विश अंकल तुम्हारे इस विश्वास का मान रख लें शिवी। ठीक है, अब इंडिया में मिलते हैं, अपनी बात कहकर सिड कॉल कट करने को हुआ, तभी शिवी ने उसे रोकते हुए कहा। रुको सिद्धांत, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या कहना है। अब अपनी थैंक यू स्पीच मिलकर ही देना, सिद्धांत ने हंसकर कहा। हाँ हाँ, तुम भी बाकियों की तरह मेरी थैंक यू स्पीच सुन सुनकर बोर हो गए हो, फिर भी थैंक यू सो मच। मैंने हर तरफ से अपनी उम्मीद खो दी थी, यहाँ तक कि मॉम ने भी मेरा साथ देने से मना कर दिया। इन मुश्किल हालातों में तुमने अपने खिलाफ जाकर मेरा साथ दिया। शिवी काफी इमोशनल होकर बात कर रही थी, उसका मूड सही करने के लिए सिद्धांत ने हल्के तरीके से कहा। अरे अरे जूनियर, इन आंसुओं से काम नहीं चलने वाला। मैं फीस के रूप में आंसू नहीं लेने वाला, मुझे एक बड़ी सी अच्छी खासी ट्रीट चाहिए। ऑफ कोर्स, शिवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हमेशा की तरह सिद्धांत से बात करके उसका मूड अच्छा हो गया था। वो दोनों इधर उधर की हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, तभी नील कमरे में दाखिल हुआ। उसने बाथरूम का दरवाजा खटखटाकर कहा, तुम पिछले 40 मिनट से अंदर कर क्या रही हो? हमें घर पहुंचना है, डैड ने ब्रंच पर बुलाया है, डिनर पर नहीं। नील के बाहर आने पर शिवी ने हड़बड़ाहट में जल्दी से सिद्धांत को बाय कहकर कॉल कट कर दिया। उसने अंदर से जवाब देते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था मुझे तुम्हारे डैड के सामने खुश दिखना है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर चेहरे को चमका रही थी। उसका कोई फायदा नहीं है, तुम कुछ भी कर लो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, नील ने उसे परेशान करने के लिए कहा। और तुम भी कितना भी अच्छे होने का दिखावा कर लो, अंदर से तुम कैसे हो मैं अच्छे से जानती हूँ, शिवी ने मुंह बनाकर जवाब दिया। चलो सूजी चलते हैं, वैसे भी इस बंदरिया से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, नील सूजी को पुचकारते हुए वहां से ले गया। शिवी जल्दी से नहाकर बाहर आई और जल्दी जल्दी में कपड़े पहनकर बाल बनाए। नील बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। उसने शिवी की तरफ देखा तो उसने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाया।
मैंने कहा ना, तुम कुछ भी कर लो लेकिन फिर भी ऐसे ही लगोगी। 1.5 घंटे बाद बाहर आई हो लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं। अगर मेरी मानो तो तुम्हें अपने इन लंबे बालों को कटवा लेना चाहिए। तुम्हें ड्रेसिंग सेंस चेंज करने की भी जरूरत है। आई नो यहाँ पर बहुत सर्दी है, बट इतने सारे कपड़े कौन पहनता है? और तुमने जो ये लूज आउटडेटेड स्वेटर पहन रखा है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शिवी को देखने के बाद नील उसके लुक की बुराइयां कर रहा था और उसे सुधारने के लिए सुझाव दे रहा था। शिवी ने अपना वही बड़ा सा पिंक स्वेटर पहना था। नील के इस तरह कहने पर उसका चेहरा उतर गया और उसने बुझी आवाज में कहा, ये मेरे पापा ने मुझे दिलाया था, साइज में बड़ा होने की वजह से फ्यूचर में पहनने के लिए रख दिया था। तुम अपने डैड से इतनी कनेक्टेड हो, ये अच्छी बात है, पर रोजाना इसे पहनने की कोई जरूरत नहीं होती। शिवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर नील ने मिठी नरमी से जवाब दिया, इसे पहनने के बाद मैं उन्हें खुद के करीब महसूस करती हूँ। शिवी ने फिर बात बदलते हुए कहा, हमें पहले ही काफी देर हो गई है, अब हमें निकलना चाहिए। शिवी ने टॉपिक को ज्यादा खींचना जरूरी नहीं समझा और अपना बैग लेकर बाहर की तरफ जाने लगी। नील भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। दोनों गाड़ी में बैठकर नील के घर जाने के लिए निकल पड़े। काफी देर ड्राइव करने के बाद आर्या की गाड़ी लंदन से कुछ दूर बसे एशविल विलेज में मौजूद थी। वहां वो एक छोटे से घर के आगे खड़ा था। घर दिखने में काफी छोटा था लेकिन काफी खूबसूरत भी। ठंड होने की वजह से उसके छत और आसपास के इलाकों पर बर्फ जमी हुई थी। वो गाड़ी के अंदर बैठे उस घर को देख रहा था। उसे देखते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। आई विश कि मैं हमेशा की तरह तुमसे इस घर में मिल पाता, आर्या ने इतना ही कहा और अपनी गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया। आगे जाते हुए रास्ते में उसे फूल वाला दिखाई दिया तो उसने एक वाइट लिली का बुके लिया और उसे लेकर आगे चल दिया। कुछ ही देर में वो एक बड़े से हॉल के आगे था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और नमी दोनों एक साथ थे। उसने बुके हाथ में लिया और उस जगह में दाखिल हुआ। आई लव यू एली, बुदबुदाते हुए उसने वो बुके एक कब्र पर रख दिया जिस पर एली हैरिंगटन लिखा था। इसी के साथ आर्या की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। जो आर्या सिंह ओब्रॉय लोगों के सामने एक सख्त और स्ट्रांग बिजनेसमैन था, वही एली की कब्र के पास बेबस बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। कैसी हो तुम बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने भी? तुम मुझे मिस क्यों करोगी? अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती तो तुम कभी मुझे छोड़कर जाती ही नहीं। तुमने मुझे इस लायक बनाया कि मैं दुनिया में हर चीज को पा सकूं, लेकिन जब तुम्हें पाने की बारी आई तो तुम ही मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा क्यों है? क्यों मैं तुम्हें अपने पास वापस नहीं ला सकता पहले की तरह गले लगाकर? आर्या अपनी बात को पूरी नहीं कर पाया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और वो वहां बैठकर रोने लगा। मैंने अपनी लाइफ में जिससे भी प्यार किया वो मुझे छोड़कर चला गया, पहले मॉम और फिर तुम। तुम भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। एक बार भी मेरे बारे में ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। एली की कब्र पर बैठकर आर्या अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा था। जो बातें वो किसी से नहीं कह पाता था वो वहां एली की कब्र के पास उसे बता रहा था। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं और हल्की हल्की बर्फ भी गिर रही थी। इतनी ठंड में भी आर्या को किसी बात का ख्याल नहीं था। वो एली की कब्र के पास बैठकर इस तरह बातें कर रहा था मानो वो उसके बिल्कुल पास बैठी हो।